एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार में आपका स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं 20वीं सदी के एक बहुत ही अहम और हाँ कभी कभी विवादास्पद भी रहे अंग्रेजी उपन्यासकार ग्राहम ग्रीन के बारे में, और खास तौर पर उनके एक बेहद महत्वपूर्ण उपन्यास पर, द हार्ट ऑफ द मैटर, जो 1948 में आया था। ग्राहम ग्रीन मतलब 1904 से 1991 तक उनका जीवन भी कम दिलचस्प नहीं था, बिल्कुल उनके उपन्यासों की तरह। वो सिर्फ लेखक ही नहीं थे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के लिए पश्चिम अफ्रीका में काम भी किया था, और उनकी यात्राएं, फिर 1926 में कैथोलिक धर्म अपनाना, ये जासूसी वाले अनुभव, इन सब ने उनके लेखन को एक अलग ही रंगत दी। वो अक्सर आस्था और शक, वफादारी और धोखा, इन धुंधली सी सरहदों पर कहानियां बुनते थे। उनके उपन्यासों की दुनिया को कई बार आलोचक ग्रीनलैंड भी कहते हैं, मतलब ये ऐसी जगहें होती हैं काल्पनिक पर असल जगहों से मिलती जुलती, जहां राजनीति अस्थिर है, नैतिकता दाव पर लगी है, माहौल अक्सर गर्म और चिपचिपा सा होता है, जैसे मेक्सिको, वियतनाम या फिर इस उपन्यास का पश्चिम अफ्रीका।
हाँ, और ये माहौल सिर्फ बैकग्राउंड नहीं होता है ना, ये किरदारों के मन की उथल पुथल का एक तरह से आईना बन जाता है।
बिल्कुल, और द हार्ट ऑफ द मैटर ग्रीन के उन उपन्यासों में आता है जिन्हें उनके कैथोलिक नॉवेल्स का हिस्सा माना जाता है। इनमें वो पाप, ईश्वरीय कानून का बोझ, अपराध बोध और ईश्वर की वो समझ से परे दया, इन जैसे मुश्किल सवालों से जूझते हैं।
ये उपन्यास जब छपा तो बहुत कामयाब रहा, लेकिन कैथोलिक चर्च के कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की, खासकर जिस तरह से इसमें व्यभिचार और आत्महत्या जैसे विषय दिखाए गए।
तो आज हम इसी मुश्किल कहानी, इसके पेचीदा किरदारों और उन गहरे नैतिक सवालों को समझने की कोशिश करेंगे जो ये उपन्यास उठाता है।
हाँ बिल्कुल, और ये कहानी हमें ले जाती है सीधे द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त। जगह है पश्चिम अफ्रीका का एक ब्रिटिश उपनिवेश, एक बंदरगाह वाला शहर। जरा सोचिए कैसी जगह होगी वो, हवा में नमी, चिपचिपाहट, बारिश का मौसम, बीमारियां फैली हुई हैं, और ऊपर से युद्ध का तनाव, शक का माहौल। ग्रीन इस माहौल को इतनी खूबी से बनाते हैं कि वो घुटन हमें किरदारों के अंदर भी महसूस होने लगती है। कहानी के बीचों बीच है मेजर हेनरी स्कोबी, पुलिस में डेप्टी कमिश्नर है, अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर है, लोग उन्हें कहते हैं स्कोबी द जस्ट, मतलब न्यायप्रिय स्कोबी। पर 15 साल की नौकरी हो गई और अब तक कमिश्नर के पद पर तरक्की नहीं मिली है, इसका मलाल तो है उन्हें। वो एक थके हुए, कुछ निराश, पर बुनियादी तौर पर एक भले इंसान लगते हैं।
हाँ, और यही कहानी का असली मर्म है ना। स्कोबी का जो असल संघर्ष है वो बाहरी दुनिया से या तरक्की ना मिलने से कहीं ज्यादा उनके अपने अंदर चल रहा है। वो अपनी पत्नी लुईस के प्रति जिम्मेदारी के बोझ तले जैसे दबे हुए हैं। लुईस उस औपनिवेशिक माहौल में बहुत दुखी है, अकेली महसूस करती है, उसे वो जगह पसंद नहीं, और स्कोबी का जो सबसे बड़ा गुण है, या कहें कि अवगुण, वो प्यार नहीं बल्कि एक अजीब सी, लगभग तबाह कर देने वाली दया, मतलब पिटी है। दूसरों को, खासकर लुईस को, किसी भी तरह के दुख या तकलीफ से बचाने की बेचैन कर देने वाली इच्छा।
बिल्कुल, और इस कोशिश में वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है,
यहाँ तक कि अपनी आत्मा से भी समझौता करने को। तो उपन्यास का जो मुख्य सवाल है वो यही बन जाता है, क्या किसी इंसान की दया, उसकी करुणा, अगर वो जिम्मेदारी के गलत एहसास और एक तरह के गुरूर से जुड़ी हो, तो क्या वो उसे अच्छाई के बजाय तबाही की तरफ ले जा सकती है?
क्या दूसरों को दर्द से बचाने की नेक नियत कोशिश भी पाप का रास्ता बन सकती है? ये सवाल बहुत परेशान करता है। कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है जब लुईस कहती है कि भाई मैं तो यहाँ और नहीं रह सकती, मुझे साउथ अफ्रीका जाना है। अब स्कोबी के पास इतने पैसे हैं नहीं कि उसे भेज सकें, बैंक से कर्ज मिलता नहीं, और यही वो अपना पहला बड़ा नैतिक समझौता करते हैं। वो यूसुफ नाम के एक स्थानीय सीरियाई व्यापारी से कर्ज लेते हैं। यूसुफ अमीर है, चालाक है, और उस पर हीरे की तस्करी जैसे गलत कामों में शामिल होने का शक भी है। स्कोबी ये बात जानते हैं,
और ये वो पहली फिसलन है, ईमानदारी के रास्ते से पहला भटकाव, जो धीरे धीरे स्कोबी को एक ऐसे जाल में उलझा देगा जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा।
कहानी में और भी किरदार हैं जो स्कोबी की जिंदगी पर असर डालते हैं। लुईस है, वो दुखी पत्नी जो जाने अनजाने में स्कोबी पर दबाव डालती है। यूसुफ है, जो पहले मददगार लगता है
पर असल में शिकारी है। और फिर एक नया क्लर्क आता है, विल्सन, जो असल में जासूस है, लुइस की तरफ खिंचाव महसूस करता है और इसलिए स्कोबी पर शक भी करता है।
हाँ, ये सब मिलकर स्कोबी के चारों तरफ एक ऐसा ताना बाना बुनते हैं जहां से निकलना उसके लिए लगातार मुश्किल होता जाता है। इन किरदारों को थोड़ा और समझना जरूरी है, खासकर स्कोबी को, हेनरी स्कोबी। वो इस उपन्यास का ट्रैजिक हीरो है, एक भला आदमी, पर उसी की भलाई, उसी की करुणा उसकी दुश्मन बन जाती है। वो इसे अपना फर्ज समझता है, अपना प्यार समझता है, पर असल में ये एक तरह का घमंड है, ईगो है, ये सोचना कि दूसरों की खुशी या दुख की जिम्मेदारी सिर्फ उसी पर है, जैसे वो खुदा की भूमिका निभा रहा हो। और उसकी कैथोलिक आस्था वो उसके लिए सुकून नहीं लाती, बल्कि लगातार बढ़ती हुई तकलीफ का कारण बन जाती है। वो चर्च के नियम जानता है, पाप पुण्य समझता है, इसलिए उसका हर गलत कदम, हर समझौता, उसे लगता है कि वो जानबूझकर ईश्वर से दूर जा रहा है। उसका पतन धीरे धीरे होता है।
हाँ, एक के बाद एक, पहले यूसुफ से कर्ज लेना,
फिर उसकी तस्करी में अनचाहे भागीदार बनना,
फिर हेलेन के साथ वो अफेयर जो करुणा से शुरू होता है,
झूठ का लगातार बढ़ता जाल,
और फिर चर्च के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन, जिसे वो ईश्वर का अपमान, सैक्रिलेज मानता है,
और अंत में आत्महत्या। ये एक ईमानदार आदमी के नैतिक और आध्यात्मिक तौर पर पूरी तरह बिखर जाने की कहानी है, बहुत दुखद है।
लुइस स्कोबी को शायद विलन कहना ठीक नहीं होगा। वो एक ऐसी औरत है जो उस माहौल में फंसी हुई है, अकेली है, शायद थोड़ी सतही भी है, उसकी अपनी तकलीफें हैं, लेकिन हाँ, वो अनजाने में स्कोबी के गिरने का एक बड़ा कारण जरूर बनती है। उसकी लगातार उदासी, उसकी शिकायतें स्कोबी के मन पर बोझ डालती हैं, और जब वो साउथ अफ्रीका से लौट कर आती है तो बड़े जोश में होती है, अपने कैथोलिक धर्म का पालन करने और शादी को सफल बनाने का इरादा रखती है। और उसकी ये मांग कि स्कोबी उसके साथ चर्च जाए और प्रसाद ले, ये स्कोबी को एक भयानक कश्मकश में डाल देती है। वो ना जानते हुए भी स्कोबी को उस आखिरी ढलान पर धकेल देती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं लगती।
फिर हेलेन रॉल्ट है, एक जहाज पर हमला हुआ था, उसमें बची हुई एक जवान विधवा, बहुत नाजुक हालत में, सदमे में। स्कोबी उससे अस्पताल में मिलता है। शुरुआत में तो स्कोबी का रवैया पूरी तरह दया और बचाने की भावना से भरा है। वो उसे एक और बेसहारा जीव की तरह देखता है जिसे मदद की जरूरत है, लेकिन ये दया जल्द ही एक अफेयर में बदल जाती है। ये रिश्ता स्कोबी को अपनी उस घुटन भरी शादी से कुछ पल का सुकून तो देता है, लेकिन हेलेन की निर्भरता वो उसके लिए एक और जिम्मेदारी बन जाती है। वो हेलेन को भी दुख नहीं देना चाहता, तो एक तरह से हेलेन भी स्कोबी के उसी घातक दोष, उसी जरूरत से ज्यादा बचाने वाली करुणा का आईना बन जाती है।
क्या स्कोबी वाकई हेलेन से प्यार करता है, या उसे बचाने वाले, उसके रक्षक होने की भूमिका से? ये सवाल उपन्यास खुला छोड़ देता है ना?
बिल्कुल। हेलेन की यात्रा भी एक शिकार बनने से शुरू होती है और स्कोबी के नैतिक मलबे में फंसी एक उलझीवी औरत पर खत्म होती है।
और यूसुफ, वो तो साफ तौर पर उपन्यास का विलेन है। अमीर, असरदार, सीरियाई व्यापारी, दुनियादार है, चालाक है और इंसानी कमजोरियों को पहचानने में उस्ताद है। बिल्कुल किसी शिकारी की तरह, जो अपने शिकार की कमजोरियां भांप लेता है। वो स्कोबी की पैसों की जरूरत भी देखता है और उसकी दूसरों को खुश रखने की बेताबी भी। पहले वो कर्ज देकर स्कोबी पर एहसान करता है, फिर जब उसे स्कोबी और हेलेन के अफेयर का पता चलता है तो उसे ब्लैकमेल करता है, हीरे की तस्करी में मदद करने को मजबूर करता है।
दिलचस्प बात यह है कि वो स्कोबी का एक तरह से सम्मान भी करता है, उसे उस बिगड़े हुए माहौल में एक ईमानदार आदमी मानता है, पर अपने फायदे के लिए उसकी ईमानदारी को तबाह करने से जरा भी नहीं हिचकता। वो दुनियावी लालच और समझौते की ताकत का प्रतीक है। आखिर में विल्सन, जो क्लर्क बनकर आया है पर असल में सरकारी जासूस है, हीरे की तस्करी की जांच कर रहा है, बाहर से देखने में थोड़ा अजीब, दयनीय सा लगता है, खराब कविताएं लिखता है, लोगों से घुलता मिलता नहीं, लेकिन अंदर से उसके अंदर एक सख्त नैतिकता है, दूसरों को जज करने की आदत है,
और वो लुइस की तरफ भी खिंचाव महसूस करता है, जिसे स्कोबी के लिए उसकी नफरत और शक और बढ़ जाते हैं।
हाँ, विल्सन एक तरह से स्कोबी का उल्टा है, उसका फॉइल है। जहां स्कोबी दया, अपराध बोध, नैतिक उलझनों में डूबा है, वहीं विल्सन नियमों और फर्ज की एक सीधी सपाट कठोर दुनिया में जीता है। वो उस बाहरी दुनिया की नजर है जो स्कोबी के अंदर के तूफान को समझ नहीं पाती, सिर्फ उसके बाहरी कामों से उसे आंकती है।
तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? पहले हिस्से में जैसा हमने बात की, माहौल बनता है, स्कोबी की निराशा दिखती है, एक युवा अफसर पेम्बर्टन की आत्महत्या उसे परेशान करती है, जैसे कोई बुरा इशारा हो।
लुइस की साउथ अफ्रीका जाने की जिद और पैसों की कमी ये उसे यूसुफ से कर्ज लेने पर मजबूर कर देती है। ये पहली दरार है स्कोबी के नैतिक कवच में।
ना, यहीं से उसकी फिसलन शुरू होती है। अपनी बरसों की कमाई हुई ईमानदारी पर वो पहला दाग लगाता है, ये सोचकर कि वो लुइस की खुशी के लिए कर रहा है।
दूसरे हिस्से में लुइस चली जाती है और स्कोबी को कुछ वक्त के लिए शांति मिलती है, मगर फिर हेलेन रॉल्ट उसकी जिंदगी में आ जाती है। जहाज पर हमले के बाद बचे लोगों में वो भी है, अपने मरे हुए पति की यादें और एक स्टैम्प एल्बम लिए हुए। स्कोबी की करुणा पहले जिम्मेदारी बनती है और फिर अफेयर।
और ये कोई जुनून वाला प्यार नहीं लगता?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी को तकलीफ से बचाने की बेचैनी से पैदा हुआ रिश्ता ज्यादा लगता है।
और इसी मौके का फायदा यूसुफ उठाता है। वो स्कोबी को बताता है कि उसे अफेयर के बारे में पता चल गया है। अब स्कोबी पूरी तरह उसके जाल में है।
हाँ, और यूसुफ उसे ब्लैकमेल करता है एक पुर्तगाली जहाज के कप्तान से जुड़ा एक संदिग्ध पैकेट जिसमें शायद हीरे हैं, उसे कस्टम से पास करवाने को कहता है। स्कोबी मना नहीं कर पाता।
अब वो सिर्फ एक मजबूर इंसान नहीं रहा, वो एक अपराधी भी बन गया है।
तीसरे हिस्से में स्कोबी का अंदरूनी नरक और गहरा हो जाता है। लुइस साउथ अफ्रीका से लौट आती है, पहले से ज्यादा खुश, ज्यादा धार्मिक और शादी को नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार। और उसकी पहली इच्छा कि वो दोनों साथ में चर्च जाएं और पवित्र प्रसाद यानी कम्युनियन ग्रहण करें।
ये स्कोबी के लिए एक भयानक आध्यात्मिक संकट खड़ा कर देता है। कैथोलिक नियमों के हिसाब से अगर वो गंभीर पाप जैसे व्यभिचार की हालत में है तो बिना पाप स्वीकार किए और उस पाप को छोड़ने का पक्का इरादा किए बिना वो प्रसाद नहीं ले सकता।
ऐसा करना ईश्वर का घोर अपमान, सैक्रिलेज माना जाएगा।
लेकिन वो फंस गया। वो हेलेन को छोड़कर उसे दर्द नहीं देना चाहता और न ही वो लुइस की नई नई उम्मीदों को तोड़ना चाहता है। उसे लगता है कि किसी ना किसी को तो दुख पहुंचेगा ही।
वो ईश्वर को नाराज करने और इन दो औरतों को दुख देने के बीच कोई रास्ता नहीं निकाल पाता
और वो सबसे विनाशकारी रास्ता चुनता है। वो चर्च जाता है, एक अधूरी बेमन की पाप स्वीकारोक्ति करता है और फिर जानबूझकर पाप की हालत में ही प्रसाद ग्रहण कर लेता है। उसके लिए ये सिर्फ एक नियम तोड़ना नहीं है, ये ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को जानबूझकर तोड़ना है, उसे धोखा देना है। ये उसकी सबको बचाने वाली करुणा के अहंकार की शायद सबसे ऊंची और सबसे खतरनाक सीमा है, दूसरों को बचाने के लिए खुद को ईश्वर की नजरों में गिरा देना।
चौथे और आखिरी हिस्से में इस घटना के बाद स्कोबी अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि अब उसके लिए माफी का कोई रास्ता नहीं बचा। वो हमेशा के लिए शापित हो गया है। वो हेलेन से मिलता रहता है, लुइस के साथ खुश दिखने का नाटक करता है। उसकी जिंदगी झूठ का एक भारी बोझ बन जाती है। और इसी दौरान एक और बहुत दुखद घटना होती है। उसका सालों पुराना वफादार नौकर अली, जिस पर वो पिता की तरह भरोसा करता था, वो यूसुफ की साजिश का शिकार बनता है।
हाँ, यूसुफ स्कोबी के मन में अली के लिए शक पैदा कर देता है और स्कोबी अनजाने में अली को यूसुफ के आदमियों के हवाले कर देता है जो उसकी हत्या कर देते हैं।
ये आखिरी विश्वासघात, एक बेगुनाह और वफादार इंसान की मौत में हिस्सेदार बनना, ये स्कोबी को पूरी तरह तोड़ देता है।
उसे यकीन हो जाता है कि उसका जिंदा रहना ही दूसरों के लिए दुख और बिगाड़ का कारण है।
और वो फैसला करता है कि लुइस और हेलेन को आज़ाद करने का और ईश्वर का अपमान बंद करने का एक ही तरीका है, खुद को ख़त्म कर लेना। वो बड़ी सावधानी से योजना बनाता है ताकि उसकी मौत एक हादसा न लगे बल्कि बीमारी से हुई मौत लगे। वो दिल की बीमारी एंजाइना के लक्षण दिखाता है, नींद की गोलियां जमा करता है। अपने आखिरी पलों में वो प्रार्थना करने की कोशिश करता है, हे ईश्वर, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये कहने की कोशिश करता है पर वाक्य पूरा नहीं कर पाता। ये उसकी आत्मा की तन्हाई और निराशा दिखाता है।
उमर जाता है, अधिकारी इसे बीमारी से हुई मौत मान लेते हैं। उपन्यास का अंत बहुत ही मार्मिक है और सोचने पर मजबूर करता है। लुइस और पैरिश के पादरी फादर रैंक के बीच एक बातचीत होती है। लुइस को शक है कि स्कोबी ने आत्महत्या की है और वो मानती है कि अब वो नरक में है। लेकिन फादर रैंक कहते हैं चर्च सारे नियम जानता है, पर वो ये नहीं जानता कि एक अकेले इंसान के दिल में क्या चल रहा है।
वाह, ये शब्द कहानी को एक अनिश्चितता और हाँ करुणा के मोड़ पर छोड़ देते हैं।
तो ये कहानी हमें कई गहरे मुद्दों पर सोचने को मजबूर करती है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है, करुणा जब विनाशकारी बन जाती है। ग्रीन दिखाते हैं कि सच्ची हमदर्दी और दूसरों को बचाने के नाम पर उन पर हावी हो जाने वाली दया, वो पिटी, उसमें फर्क है। स्कोबी की दया असल में एक तरह का अहंकार है।
हाँ, वो दूसरों को इतना कमज़ोर समझता है कि उनकी तकलीफ खुद उठाना चाहता है और इस कोशिश में सबको ले डूबता है। वो खुद को सबका रखवाला समझ बैठता है, जैसे सारी दुनिया का बोझ उसी के कंधों पर हो।
बिल्कुल, उसकी ये मदद असल में दूसरों को उनकी लड़ाई लड़ने का मौका ही नहीं देती। ये एक मीठा जहर साबित होती है। दूसरा अहम पहलू है पाप, ईश्वरीय कृपा और सजा की प्रकृति। उपन्यास कैथोलिक मान्यताओं के दायरे में इन सवालों को बहुत गहराई से देखता है।
कैसे एक छोटा सा समझौता बड़े पापों की तरफ ले जाता है? पापी मन कैसे सोचता है? क्या धार्मिक नियम हमेशा इंसाफ करते हैं?
और फादर रैंक के वो आखिरी शब्द, वो ईश्वर की दया को इंसानी नियमों से कहीं ज्यादा बड़ा और रहस्यमयी बताते हैं।
हाँ, वो शब्द एक उम्मीद की किरण छोड़ जाते हैं। शायद स्कॉबी जैसा इंसान जिसने इतने पाप किए, उसके लिए भी ईश्वर के दरबार में कोई जगह हो। उपन्यास जवाब नहीं देता, पर सवाल जरूर खड़े करता है।
फिर है असफलता और जिम्मेदारी का बोझ। स्कोबी जिम्मेदारी ओढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर मोर्चे पर नाकाम रहता है। पति, प्रेमी, पुलिस ऑफिसर, कैथोलिक, किसी भी भूमिका में वो सफल नहीं हो पाता।
शायद जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारी लेने की कोशिश ही उसे नाकाम बना देती है।
और वो औपनिवेशिक माहौल, वो सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है। वो गर्मी, वो नमी, वो बीमारियां, वो बोरियत, वो छोटी सोच वाले लोग, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां इंसान की नैतिकता और आत्मा दोनों घुटने लगती हैं।
वो ग्रीनलैंड स्कोबी के अंदर के नरक का बाहरी रूप बन जाता है। उस माहौल में आदर्शों का टिके रहना बहुत मुश्किल हो जाता है।
ग्रीन की लिखने की शैली भी कमाल की है। वो ज्यादातर कहानी स्कोबी के नजरिए से कहते हैं, थर्ड पर्सन लिमिटेड पर्सपेक्टिव। हम पाठक स्कोबी के दिमाग में जैसे कैद हो जाते हैं। उसकी चिंताएं, उसका अपराध बोध, उसकी प्रार्थनाएं, सब हम महसूस करते हैं। इससे एक अजीब सी घुटन, क्लॉस्ट्रोफोबिया पैदा होती है और हम उसके गिरने को बहुत करीब से देखते हैं।
हाँ, ये पाठक को मजबूर करता है कि वो स्कोबी से नफरत करने के बजाय उसकी तकलीफ को समझे, भले उसके कामों से सहमत न हो। इससे उसकी कहानी और भी ज्यादा दुखद लगती है।
और वो माहौल रचने में तो ग्रीन का जवाब नहीं। वो अपनी लिखाई में हमारी सारी इंद्रियों को जगा देते हैं। टिन की छतों वाला शहर, कीचड़ जैसा पानी, कीड़ों की भिनभिनाहट, चिपचिपी गर्मी,
ये सिर्फ नज़ारे नहीं हैं, ये उस जगह की नैतिक सड़न और आध्यात्मिक घुटन के प्रतीक बन जाते हैं।
उपन्यास में प्रतीक भी बहुत हैं। बार बार दिखने वाले गिद्ध और चूहे मौत, सड़न और छिपे हुए पाप की तरफ इशारा करते हैं।
स्कोबी की माला, रोजरी या दूसरे धार्मिक चिन्ह उसे सुकून नहीं देते, बल्कि उसके विश्वासघात की याद दिलाते हैं।
और हेलेन की वो स्टैम्प एल्बम उसकी खोई हुई मासूमियत और बचपने का प्रतीक है, जो स्कोबी की उस विनाशकारी दया को उकसाती है।
और विडंबना, आयरनी तो कदम कदम पर है। स्कोबी द जस्ट का नाम, जबकि हम उसके पतन को देख रहे हैं,
उसका हर दुख टालने का प्रयास और ज्यादा दुख पैदा करता है। और उसकी आत्महत्या, जिसे वो दूसरों को आजाद करने के लिए करता है, पीछे अपराध बोध और सवालों का बोझ छोड़ जाती है। ये दिखाता है कि कैसे नेक इरादे भी गलत फैसलों से तबाही ला सकते हैं।
कुछ पंक्तियां हैं जो उपन्यास के सार को पकड़ती हैं, जैसे स्कोबी का ये सोचना, पॉइंट मी आउट द हैप्पी मैन एंड आई विल पॉइंट यू आउट ईदर एक्सट्रीम ईगोटिज्म, सेल्फिशनेस, ईविल और एल्स एन एब्सोल्यूट इग्नोरेंस।
मतलब मुझे कोई खुश इंसान दिखाओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा या तो हद दर्जे का अहंकार, स्वार्थ, बुराई या फिर निपट अज्ञानता।
दुनिया को देखने का कितना निराशावादी नजरिया है। स्कोबी मानता है कि जो इंसान जिम्मेदार है या जिसे दुनिया की तकलीफों का एहसास है, वो खुश रह ही नहीं सकता।
ये सोच उसकी अपने दुख को सही ठहराती है और उसे लगता है कि सबका दुख उठाना उसी का काम है।
एक और पंक्ति है जो धर्म और निराशा के रिश्ते पर है। डिस्पेयर इज द प्राइस वन पेज फॉर सेटिंग वन सेल्फ एन इम्पॉसिबल एम। Only the man of goodwill carries in his heart this capacity for damnation.
निराशा वो कीमत है जो कोई अपने लिए एक नामुमकिन लक्ष्य तय करने पर चुकाता है। सिर्फ नेक इरादे वाले इंसान के दिल में ही शापित होने की यह क्षमता होती है।
ये बड़ी गहरी बात है। ग्रीन कह रहे हैं कि सच्ची आध्यात्मिक निराशा उन्हीं को घेरती है जो अच्छाई का लक्ष्य रखते हैं और बुरी तरह नाकाम होते हैं। जो बुरे हैं वो शायद कभी इतने निराश नहीं होते।
ये स्कोबी जैसे किरदारों के लिए एक अजीब सी सहानुभूति जगाता है। वो गलत हैं, पर उनमें एक नैतिक गंभीरता है जो शायद पूरी तरह बुरे लोगों में नहीं होती।
और अंत में फादर रैंक के वो शब्द जो उन्होंने लुईस से कहे थे, फादर रैंक टू लुईस, द चर्च नोज ऑल द रूल्स बट इट डजंट नो व्हाट गोज ऑन इन अ सिंगल ह्यूमन हार्ट।
चर्च सारे नियम जानता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि एक अकेले मानव हृदय में क्या चल रहा है।
ये शब्द उपन्यास के अंत में एक तरह की शांति और रहस्य का भाव छोड़ जाते हैं। चर्च के नियम अपनी जगह है, पर इंसान का दिल, उसके इरादे, उसकी तकलीफें, ईश्वर के साथ उसका रिश्ता, ये सब इतनी जटिल हैं कि उन पर कोई बाहरी इंसान या संस्था शायद आखिरी फैसला नहीं सुना सकते।
ये स्कूबी के लिए भी दया का दरवाजा खुला रखते हैं, ये बताते हुए कि ईश्वर की समझ और करुणा इंसानी नियमों से कहीं परे है। इस उपन्यास को पढ़ना एक भारी थका देने वाला पर बहुत गहरा अनुभव है। पाठक स्कूबी के साथ उसकी घुटन महसूस करता है, उसकी तकलीफ के लिए सहानुभूति महसूस करता है, उसकी विनाशकारी करुणा के लिए नहीं पर उसकी लाचारी के लिए।
हाँ, उसका पतन देखना डरावना भी है और दिल तोड़ने वाला भी है। अंत में कोई आसान समाधान या सुकून नहीं मिलता, मन में एक उदासी और बहुत सारे सवाल रह जाते हैं, क्या सही है क्या गलत, ये सब धुंधला जाता है।
ये किताब हमें नैतिकता के बने बनाए पैमानों पर सवाल उठाने को मजबूर करती है। ये आस्था को किसी सुरक्षित पनाहगाह की तरह नहीं बल्कि आत्मा के एक युद्ध क्षेत्र की तरह दिखाती है।
शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये इंसानी कमजोरी को बिना किसी लाग लपेट के दिखाती है, और ये इशारा करती है कि इंसान के दिल के रहस्यों को शायद सिर्फ ईश्वर ही पूरी तरह समझ सकता है। ये एक ऐसी कहानी है जो पढ़ने के बाद भी जहन में घूमती रहती है।
तो अंत में ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे नेक इरादे भी अगर गर्व और गलत समझी गई करुणा से प्रेरित हों तो विनाशकारी हो सकते हैं।
और ये आज भी प्रासंगिक है क्योंकि ये मानवीय कमजोरी, जिम्मेदारी के बोझ और विश्वास की जटिलताओं का एक शक्तिशाली और कालातीत चित्रण प्रस्तुत करता है जो हमें आसान जवाबों से परे सोचने को उकसाता है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।